सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं। अथ नत्वार्हतो क्षुण चरणान् शमनानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेशते। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है और उसमें भी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 25 पर। देखो, हमने 13 नंबर की गाथा इस श्लोक पढ़ा था, उसमें ये बात लिखी थी कि सर्वज्ञ की आज्ञा से वैश्विक सुख छोड़ने योग्य, वैश्विक इंद्रिय सुख की बात है यहाँ पर, और आत्मिक सुख उपादेय है। हम पढ़ेंगे वहां 24 पेज पर, उसका अर्थ फिर दोबारा पढ़ते। इस प्रकार का श्रद्धान रखते हुए भी, यानी समय दर्शन हुआ होने पर भी, अभी 3 कषाय चौकड़ी है बाकी, इसलिए कहते पृथ्वी आदि की रेखा के समान अप्रत्याख्यानावरण आदि 12 कषायों के अधीन होकर इंद्रियों से होने वाले सुख को भोगता है और स्थावर जंगम प्राणियों को पीड़ा भी पहुंचाता है, यानी उसको अविरति चल रही 12 प्रकार। फिर भी कोतवाल के द्वारा मारने के लिए पकड़े गए चोर के समान अपनी निंदा ग्रहा करता है। निंदा करना यानी स्वयं मन में सोचना कि बात गलत है, ये योग्य नहीं है, और ग्रहा का अर्थ होते गुरु के पास जाके वो बोलना वचन से अपने कि मेरी ऐसी ऐसी भूल होती है। वह अविरत समय दृष्टि भी पाप से उत्कृष्ट क्लेश को प्राप्त नहीं होता। ये प्राप्त शब्द बराबर छपा नहीं है, उसका विशेषार्थ हमने पढ़ा था 4-5 लाइन शुरू से, फिर दोबारा पढ़ते 25 पेज पर आए। धर्म का प्रारंभ समय दर्शन से होता है, इसी से सभी आचार्यों ने समय दर्शन को धर्म का मूल कहा। आचार्य कुंकुंद ने अपने दंशन पाहुड़ में समय दर्शन की प्रशंसा करते हुए समय दर्शन को धर्म का मूल कहा है और समय दर्शन से भ्रष्ट को ही भ्रष्ट कहा है और उसको मोक्ष का अपात्र कहा है। जिसके समय दर्शन नहीं है उसके मोक्ष भी नहीं हो सकता। इसी तरह आचार्य समंत भद्र ने भी आचार्य कुंदकुंदा का ही अनुसरण करते हुए कहा है कि तीनों कालों और तीनों लोकों में सम्यक्त्व के समान कल्याणकारी और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी कोई भी नहीं है, और यह भी कहा है कि यतः ज्ञान और चारित्र से समय दर्शन श्रेष्ठ या उत्कृष्ट है, इसलिए उसे मोक्ष मार्ग में कर्णधार कहा है। यानी उसका पहला नाम लेते हैं समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, होते तो तीनों एक साथ में, फिर भी सम्यक दर्शन के बिना अकेला शास्त्र ज्ञान कहो या अकेले बाह्य तप की बात करो तो कुछ कार्यकारी नहीं है, मोक्ष मार्ग उससे प्रारंभ नहीं होता, इसलिए इसको प्रमुख स्थान दिया है। यहां तक तो हमने कल पढ़ा था, अभी इससे आगे पढ़ेंगे। आचार्य अमृत चंद्र जी ने कहा है, ये नीचे 5 नंबर का जो है ना पुरुषा सिद्धि उपाय का श्लोक दिया है, हम नीचे देखते हैं फुटनोट में 5 नंबर। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्ते वयतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। यानी तत्र आदौ उसमें सबसे प्रथम सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयं अखिल यत्नेन, सभी प्रयत्नों से उसको प्रकट करना योग्य है। तस्मिन् सति एव, सत्येव न सति एव, उसके होने पर ही यथा भवति ज्ञानं चरित्रं च, यानी उसके होने पर ही ज्ञान और चरित्र होते हैं, यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होते हैं। उसका अर्थ ऊपर लिखा है, हम पढ़ेंगे। आचार्य अमृतचंद्र जी ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में से सबसे पहले पूर्ण प्रयत्न के साथ सम्यक दर्शन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञान और चरित्र सम्यक होते हैं, उसको सम्यक नाम प्राप्त होता है। इसी से सूत्र जी में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, इस प्रथम सूत्र में सम्यक दर्शन को प्रथम स्थान दिया है। सारांश यह है कि सम्यक दर्शन के बिना न शास्त्र ज्ञान का कोई मूल्य है, न आचार का कोई मूल्य है। हमें तो बाह्य आचार की ही महिमा आती है और लगता है कि कोई अन्य जो बहुत आगे बढ़ गया, उसने इतना इतना त्याग किया, इतने व्रत धारण किए, या बाह्य शास्त्र ज्ञान की महिमा आती कि उन्हें इतने ग्रंथ पढ़े, इतने अभ्यास, इतने पाठी है। तो कहते हैं यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसे कुछ नहीं, थोड़ा पुण्य बंधेगा, परंतु जब तक सम्यक दर्शन नहीं का अर्थ क्या है, मिथ्यात्व चल रहा है। तो मिथ्यात्व चल रहा है और उसके छूटने का कोई उपाय नहीं और बस इसी में उलझ रहा है, और यदि मान रहा है कि इसी से मेरा कल्याण होगा तो उसका तो सम्यक्त्व का रास्ता भी बंद है। यही बात लोगों को पता नहीं चलता। मिथ्यात्व जो है, यानी वो तो हम तो इतने पुण्यशाली, हमने कोई पाप नहीं किया ऐसा लगता है, और कोई बहुत चोर है कहो, हिंसक है कहो, खूनी है, वो तो पापी सारा जगत उसको कहता है, परंतु जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है वो पापी ऐसे किसी को लगता ही नहीं है, अपने आप को भी नहीं लगता कि हम कुछ पाप कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि जिन शासन का सर्वप्रथम उद्घोष है कि इंद्रियों के द्वारा हमें जो सुख मिलता है वह सुख सुख नहीं है, दुख है, इसको दुख मानने को तैयार नहीं है जी। जब प्रवचनों में आता है कि दुख दूर करने का उपाय जिन भगवान ने बताया है, हर एक जीव को उसका उपाय करना चाहिए, तो लोग कहते हैं हम तो दुखी नहीं, हम तो सुखी है, आप दुखियों को जाके उपदेश दो, हमें क्यों उपदेश दे रहे हैं। ये बात हुई थी जब पहली बार हम गए थे अमेरिका में, वो फिनिक्स में गए थे शायद वहां, और उस समय वो कतरीना कौन सा सेन तो तूफान आया था, कैची नहीं नाम था, कैची, पूरा गांव का गांव बह गया था। तो कहते थे कि वहां जाके उपदेश दे ना, वो दुखी है, हमें क्यों उपदेश दे रहे, हम क्या सुखी है, हम चाहे जितना चाहे जब चाहे जो चीज खा सकते हैं, हमें सभी साधन उपलब्ध है, हम दुखी तो है नहीं, आप हमें क्यों उपदेश दे रहे। यानी भरी सभा में एक जन खड़े होकर बोल रहे, यानी दुख मालूम ही नहीं ना, तभी तो बोल रहे हैं, अभ्यास ही नहीं है, यानी ये तो सुना ही नहीं और ऐसा भाषित नहीं होता है, यानी ऐसे विचार भी नहीं आते, ये तो है ना, ऐसे विचार तीव्र मिथ्यात्व के कारण ऐसे विचार भी नहीं आते, वो बाप भी नहीं लगता है। और संयोगों से जो संयोग में जो कमी है उसी से जीव दुखी ऐसा मानते। तो ये पहले में पहले सर्वप्रथम उद्घोष सभ्य क्या बताते, इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है वो सुखी नहीं है, दुखी है। सुख तो आत्मा का धर्म है, तो जिसका जो धर्म है वहां से मिलेगा कि अन्य चीजों से मिलेगा। इंद्रियों के जो विषय है सारे, वो सारे पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है, उसको तो हम मात्र जानते हैं और मानते हम उसको भोग रहे हैं। पुद्गल में सुख नाम का कोई गुण ही नहीं है, तो तो उसमें से सुख मिलेगा कैसे? ये जीव की अपनी खोटी कल्पना, क्योंकि उसको इच्छा होती है, इच्छा यही दुख है। और इच्छा मेटने का उपाय क्या करता है? तो इच्छा को पूर्ण करके सुखी हो जाऊंगा ऐसा मानता है। जब तक वो चीज मिलती है तब दूसरी अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती है, और उसकी तो ये तो दुख की परंपरा परिपाटी चलती रहती है। तो उपाय क्या होना चाहिए कि जहां इच्छा ही उत्पन्न न हो वही सच्चा उपाय है। और इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है? पर पदार्थों से कुछ सुख प्राप्त करो ये क्यों लगता है? ये मिथ्या मान्यता के कारण। जब मान्यता मिथ्या है तो कोई चीज अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। अच्छी को प्राप्त करना चाहता है, बुरी को दूर हटाना चाहता है, और उसी में रात दिन लगा रहता है। और जिन कारणों से, साधनों से ये सारा इकट्ठा होता है, अपनी जो इंद्रियों की, जो विषयों की बातें पूरी होती है, ऐसा जो पैसा है साधन, उसके पीछे, कमाने के पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद करता है, फिर भी सुखी तो होता नहीं है। थोड़े पैसे वाला सुखी के ज्यादा पैसे वाला पैसे से ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है। देखो, सुख तो आत्मा का धर्म है। जब तक इस पर श्रद्धा न जमे, ये बाह्य केवल बोलने से कुछ नहीं, शास्त्र में पढ़ा और हम भी दूसरे को बताने लगे उससे कुछ नहीं होगा। क्या सचमुच अपने को लगता है कि आत्मा में ही सुख है? तो कहते हैं, जब तक इस पर श्रद्धा न जमे तब तक समस्त त्याग और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। उसमें तो त्याग की अहमपना उसमें आ जाता है, मैं इतना त्यागी हूँ, मैंने इतना इतना त्याग कर दिया, और क्या क्या त्याग किया उसकी लिस्ट उसके वो मन में सोचते रहता है। यानी वो जो त्याग हुआ है या उसके जो संयोग में नहीं चीजें है, तो मैंने इसका त्याग किया, पहले मैं भोग रहा तू भोक्ता बुद्धि है, अब मैंने उसका त्याग किया, इस तरह से उसी में उसकी आत्मबुद्धि पड़ी है। और यह श्रद्धा सात तत्वों पर श्रद्धान होने से ही होती है। ये सात तत्वों के नाम मालूम है क्यों? हाँ। मोक्ष आश्रय बंध संवर निजरा और मोक्ष। इसी से तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक तो कहा। ये तत्वार्थ, तत् यानी वह, त्व यानी उसका वो पना, वस्तु का जो भाव है उसको तत्व कहेंगे। और अर्थ तत्वार्थ, अर्थ यानी पदार्थ, तो जिसका जो भाव है, जो अभी हमने देखा है जीव, तो जीव का कैसा भाव है, अजीव का क्या भाव है, उसका स्वरूप क्या है, आश्रयों का क्या स्वरूप है, ये सभी तत्वों को अन्य अन्य स्थान दिया है। उसका अर्थ क्या है कि उनमें भिन्नता है, तो ये भिन्नता उनके लक्षणों से जाननी चाहिए, और उस पर अपने ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा उसका निर्णय तक पहुंचना चाहिए, तत्वों का भावभाषण होना चाहिए, तब कहेंगे उसकी श्रद्धान हुई। और श्रद्धान तब कहेंगे जब उस विचार पूर्वक, उसके ज्ञान पूर्वक आत्मा में स्थिरता पाई जाएगी और आत्मिक आनंद का अनुभव होगा, तब उसकी श्रद्धा सच्ची हुई है, ऐसी हम बात करेंगे। तो यह श्रद्धा सात तत्वों पर श्रद्धान होने से ही होती है। इसी से तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। इसी में देव शास्त्र गुरु भी आ जाते हैं। ये सात तत्वों में कैसे आते हैं? मोक्ष तत्व में सिद्ध नहीं आते। देखो, ऐसा कहना है, मोक्ष तत्व की श्रद्धान में सच्चे देव के श्रद्धान गर्भित, उसमें तो अरिहंत को भी भाव मोक्ष में लिया है, सिद्धों को। संवर निर्जरा के श्रद्धान में सच्चे गुरु का श्रद्धान गर्भित है, और सच्चे शास्त्र का श्रद्धान, क्योंकि ये सात तत्व कहे किसमें है, तो शास्त्र में तो पता है, तो शास्त्र के श्रद्धान में सातों तत्वों का श्रद्धान गर्भित। तो कहते इसी में देव शास्त्र गुरु भी आ जाते हैं। यह श्रद्धा ऊपरी नहीं होती, इसका अर्थ क्या है, यानी आपने बोला ना, आप बोलते तो हमने बिल्कुल सत्य मानी, हमारा आपके कथन पर 100% विश्वास है, इसको श्रद्धा नहीं कहते, ये ऊपरी श्रद्धा होगी, ये तो ज्ञान में चला जाएगा, ये श्रद्धा में नहीं आएगा। तो उसको कहा, इसी से सम्यक दर्शन को आत्म परिणाम कहा, ये श्रद्धा को आत्म परिणाम क्यों कहा, ये तो आत्मा का भाव है, ये ऊपरी ऊपरी श्रद्धा नहीं है कि किसी ने बताया और हमने उस पर भरोसा रखा, वो बात यहाँ नहीं है। समस्त प्रभावों से भिन्न, अपने चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा ही वस्तुतः सम्यक दर्शन है। क्या कहा, सच में क्या लिया, समस्त प्रभावों से भिन्न, यहाँ प्रभाव ने पर पदार्थों के भावों को तो प्रभाव कहते ही है, तो परवस्तुओं को देखकर अपने उठने वाले जो भाव है आत्मा के, आश्रय बंधन कहेंगे, वो भी प्रभाव में है विभाव। तो कहते समस्त प्रभावों से भिन्न, अपने चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा ही वस्तुतः सम्यक दर्शन है। चैतन्य स्वरूप को जाना नहीं तो उसका श्रद्धा हम कैसे कहेंगे, हम चैतन्य स्वरूप की सामान्य श्रद्धा तो नारकी तिर्यंच आदि को भी होती है, जिन्हें विशेष ज्ञान नहीं होता वे भगवान जिनेन्द्र अन्यता नहीं कहते, मात्र इसी दृढ़तम श्रद्धावश यह श्रद्धा करते हैं कि वैषयिक सुख हेय है और आत्मिक सुख उपादेय है। लौकिक में भी हम देखते हैं किसी को कुछ बात समझा दी तो उस बहुत अच्छी तरह से उसने श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार किया, और कोई ऐसा होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो उसको बहुत विस्तार से समझाने पर उसको समझ नहीं आता। तो कहते किसी के बहुत शास्त्रों का ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी जिनेन्द्र भगवान ने ऐसी बात बताई तो वो तो परम सत्य है ऐसा मानकर जो स्वीकार करते हैं तो उनके भी दृढ़तरम श्रद्धा हो जाती है। इस श्रद्धा को ग्रंथकार ने निश्चय सम्यक दर्शन रूप कहा है। वो अपनी टीका में लिखते हैं, एतेन निश्चय सम्यक दर्शन भाग भवन इत्युक्तम वेदितव्यम्। अर्थात इच्छित स्त्री आदि को भोगने से होने वाला सुख छोड़ने योग्य है, कभी भी सेवनीय नहीं है, क्योंकि उसका सेवन दुखदायक कर्मबंध का कारण है, तथा रत्नत्रय में उपयोग लगाने से आत्मा में प्रकट हुआ सुख उपादेय है, ऐसा उसे अंतरंग से रुचता है। वह स्वप्न में भी अन्यता नहीं सोचता, इसका कारण है उसकी जिनेन्द्र के शासन पर दृढ़तरम श्रद्धा कि जिनेन्द्र अन्यथावादी नहीं है, इससे जानना चाहिए वह निश्चय सम्य दृष्टि है। चतुर्थ अविरत सम्य दृष्टि गुणस्थान, निश्चय सम्य दर्शन को लेकर ही समझना चाहिए, क्योंकि इस बात में बहुत उल्टा पुल्टा लोग मानते हैं कि नहीं नहीं यहाँ तो मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन है, यानी बस उसने बाह्यता आत्मा का अनुभव नहीं होता है, बस उसने देव गुरु शास्त्र को ही मानता है अन्य को नहीं मानता है, इस तरह से श्रद्धा ने बस इतना ही, वहाँ वो शुद्धात्मा की अनुभूति को स्वीकार नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग है, यहाँ पंडित जी स्वयं कह रहे चतुर्थ अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान निश्चय सम्यक दर्शन को लेकर ही समझना चाहिए। उसके लिए परमात्मा प्रकाश की टीका का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, जो अपना चल रहा है ना अभी दूसरी क्लास में परमात्मा प्रकाश, उसकी टीका में ब्रह्मदेव जी ने लिखा है, ब्रह्मदेव जी ने संस्कृत टीका लिखी है, और मेरे ख्याल से पंडित दौलत राम जी ने की, हिंदी किसने बनाई, दौलत राम जी ने परमात्मा प्रकाश की, मेरे ख्याल से दौलत राम जी ने लिखी उसकी, हाँ ब्रह्मदेव से संस्कृत वृत्ति और दौलत राम से हिंदी भाषा टीका जो अभी हमारी चल रही, उसी का यहाँ उदाहरण दिया है। देखो संस्कृत दिया है, उसी का हिंदी बनाया दौलत राम जी ने, और हम उसको पढ़ रहे जो प्रभाकर भट्ट पूछता है उसका। यह उन्होंने परमात प्रकाश टीका दोहा 217 नीचे लिखा है संस्कृत में, उसका हिंदी ऊपर लिखा है कि प्रभाकर भट्ट पूछता है। ये प्रभाकर भट्ट कौन थे मालूम है क्या? शिष्य थे, और पूरा शास्त्र ऐसा लिखा है कि प्रभाकर भट्ट को संबोधन करके ये बता रहे। तो वो पूछते अपनी शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, इस प्रकार की रुचि रूप निश्चय समय दर्शन होता है, ऐसा आपने अनेक बार कहा है। शिष्य गुरु को पूछता है, यहाँ आप वितराग चारित्र के साथ निश्चय समय तो होता है ऐसा कहते हैं, यह तो पूर्वापर विरुद्ध है। ये शंकाकार पूछते कि पहले तो बताया था आपने कि शुद्धात्मा ही उपादेय रुचि रूप निश्चय समय दर्शन, और अब आप कह रहे हो कि जो वितराग चारित्र के साथ निश्चय समय तो होता है, यानी मुनियों के चारित्र के साथ ऐसा, तो ये तो विरुद्ध हुई, क्योंकि अपनी शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, इस प्रकार की रुचि रूप निश्चय सम्यक गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर परमदेव, यानी गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर, जब तक उन्होंने मुनि दशा नहीं ली तब तक की बात है। भरत सगर, ये सगर नाम सुना है कभी? नहीं सुना। चक्रवर्ती थे, भरत भी चक्रवर्ती थे, राम पांडव आदि के था, किंतु उनके वितराग चारित्र नहीं था, यह परस्पर विरोध है ये लगता है, इसलिए प्रश्न पूछा। यदि था तो वे असंयत कैसे हुए? क्योंकि इनकी मान्यता क्या है, संयमी को ही, यानी वितराग चारित्र नहीं संयमी को ही निश्चय समय दर्शन होता है, चौथे वाले को नहीं होता, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। यह पूर्व पक्ष है, पक्ष ने प्रश्न पूछने वाले ने ये वहां प्रश्न प्रस्तुत किया। इसका उत्तर यह है, उनके शुद्धात्मा उपादेय है, इस प्रकार की भावना रूप निश्चय सम्यक्त्व वर्तमान है, किंतु चारित्रों के उदय से स्थिरता नहीं है। मुनियों को अधिक स्थिरता है और इनके इतनी नहीं है, फिर भी शुद्धात्मा उपादेय है वो अनुभव पूर्वक जाना है उन्हें, ऐसे कहने के लिए उपादेय नहीं कह रहे। व्रत प्रतिज्ञा का भंग होता है इस कारण असंयत कहे जाते हैं, यानी अभी इंद्रियों से कटना नहीं हो रहा है, प्राणियों की रक्षा पूर्ण रूप से नहीं पलती है, इसलिए उनको असंयमी कहते हैं। शुद्धात्म भावना से च्युत होने पर भरत आदि निर्दोष परमात्मा का अरिहंत सिद्धों का गुण स्तवन या वस्तु रूप स्तवन आदि करते हैं, उनके चरित पुराण आदि सुनते हैं। शुद्धात्म भावना से च्युत होने पर, यानी शुद्धोपयोग से बाहर आने पर, ये शुद्धात्म भावना ने शुद्धात्म में एकाग्रता, भावना ने केवल उसकी इच्छा करना ऐसा अर्थ नहीं, उस रूप भवन उनके आराधक आचार्य उपाध्याय साधुओं को दान पूजा आदि करते हैं, जिससे खोटे ध्यान से बचे, यानी अशुभ उपयोग से बचते रहते हैं और संसार की स्थिति का छेद हो, इसलिए शुभराग होने से सराग सम्य दृष्टि कहलाते। क्या कहना चाहते हैं? मुनियों को वितराग और इनको सराग क्यों कहते हैं? कि वहां स्थिरता की मुख्यता है, ये अंतर्मूर्त में शुद्धोपयोग होता है। ये चौथे पांचवे गुणस्थान वाले के मुख्यता चौथे वाले की भी बात करेंगे हम तो अंतरंग स्थिरता तो होती है कभी कभी, परंतु उसमें स्थिरता नहीं है, कभी कभी होती है। तो भगवान की पूजा है, यात्रा है, दान है, आचार्यों को आहार दान आदि, ये सभी बातें उनकी चलती रहती है, इसलिए मुख्यतः राग की है, पुण्य परिणामों की है, शुद्धोपयोग नहीं होता ऐसा नहीं है। स्थिरता इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी बारंबार नहीं होती है, इसलिए उनको सराग कहा और मुनियों के लिए वितराग। उनके सम्यक्त को निश्चय सम्यक्त इसलिए कहा जाता है कि वितराग चारित्र के अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्व का परंपरा से कारण है। यानी आगे चलकर वो मुनि अवस्था धारण करने वाले हैं, तो ये उनका अविनाभावी ऐसा जो निश्चय सम्यक्त्व इनके भी पाया जाता है। इस तरह ब्रह्मदेव जी ने राग के सहभावी सम्यक्त्व को व्यवहार सम्यक्त्व और राग के अभाव सहित सम्यक्त्व को निश्चय सम्यक्त्व कहा है, क्योंकि राग नाम व्यवहार का है। किंतु वह सराग सम्यक्त्व वितराग चारित्र के अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्व का कारण है, इसलिए भी निश्चय सम्यक्त्व कहा है। इस विषय में ऐसा चल रहा है, ऐसा हम नया नया सुन रहे हैं। हाँ हाँ, कहते कुछ लोग ऐसा आजकल कह रहे हैं कि पूजा आदि की क्या आवश्यकता है, हम तो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय उत्कृष्ट तप है, इसलिए हम स्वाध्याय ही कर रहे हैं। परंतु तप उनके कहाँ है ना, समय दर्शन का आता पता है, क्योंकि यदि समय दृष्टि वे होते तो मान्यता ऐसी नहीं करते। हाँ, पूजा से बंद होता है और व्यापार धंधे से नहीं होता है।
उत्कृष्ट बंद चाहिए जो कहा जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसा बोलते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है।
यानी लोग ऐसा कहते हैं पूजा वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है, रोज रोज करने की जरूरत, ऐसा कह रहे हैं।
अच्छा,
स्वाध्याय अच्छा है ज्यादा, इसलिए हम रोज करते हैं। हाँ, और स्वाध्याय से उत्कृष्ट क्या है वो भी नहीं करते। और व्यापार धंधा तो करना चाहिए, है ना, पैसा चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय के लिए पुस्तक भी खरीदनी है ना। देखो, ये मिथ्या मान्यता चल रही है, यदि क्योंकि गृहस्थों के आचार में भी देव पूजा को पहला स्थान है। देव पूजा गुरु पास्ती, यानी गुरु की उपासना, गुरु से उपदेश सुनना, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप और दानम।
मैंने भी कहा तो अपने अपने उदय भाव होते हैं, सबके सबके नहीं होते।
अरे वाह रे वाह,
ये
अभी क्या है, हरेक के अपने अपने मत कल्पना से अभी धर्म का स्वरूप तोड़ मरोड़ रहे हैं, ये सही नहीं। सच्चा स्वरूप ये है कि देव पूजा, क्योंकि ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा हमें ये उपदेश प्राप्त हुआ है, और जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप हम उनकी पूजा कर रहे हैं, केवल वहाँ बाह्य कुछ यहाँ से चावल उठाए यहाँ रखा, वो पूजा नहीं है। उनके गुणों का स्मरण, उनके वितरागता क्या है वो अपने मन में, बिल्कुल जितने लोग उतने मत कल्पना रहते हैं। यानी स्वाध्याय करने से वो भगवान को भी अभी क्या जरूरत नहीं है पूजा करने की, ऐसा अगर कहते हैं, क्योंकि सच्चे देव गुरु
है, उनके श्रद्धा है सच्चे गुरु, ये जरूरी नहीं है उसमें।
भविष्य में तुम भी स्वयं सिद्ध बनने वाले हो, आपके अपने बता दे कभी कभी करो।
ऐसा बोलना, रोज दुकान में भी जाने की क्या आवश्यकता है, जो पुण्य में है जो मिलने वाला है पैसा, घर में बैठो ना तो वहाँ तो।
हाँ,
जो कुछ है और जो चल रहा है उसकी बात है। बात जो बात लौकिक में क्या क्या चलती है वो बात बता रहे हैं, उनकी तो ऐसी मान्यता नहीं है, हमको पता है, क्या करें अभी ऐसा ही, क्योंकि अपने मत कल्पना से लोग चल रहे हैं, अपनी मनमानी जिसको कहेंगे।
गुरुदेव कहते थे आज धर्म नहीं, अपने
देखो हमने शायद आगे ये अनगार में शायद आएगी बात, हमने पहले भी पढ़ी थी ये मुनियों के जो आचार होते उसमें भी जाके मुनियों के सामने आचार्य के सामने जाकर आलोचना होती, अपने जो दोष लगे है उसका कथन कर, बाहर के लिए जाके आए तो आचार्य के पास जाइए अपने दोषों का कथन होता है। तो वहां भी कोई मुनि ऐसे सोचता होगा अरे बाजू वाला दोष कथन कर, हाँ मेरा भी ऐसा ही लगा था, वो क्या प्रायश्चित देते हैं, तो मैं तो बोलूंगा नहीं मेरे दोष, वो सुनूंगा और वो प्रायश्चित में स्वयं अंगीकार करेगा, तो कहते ये मायाचारी उनके लिए भी नहीं चलेगी। यानी ये जो कुछ आचार भी है वो भी भगवान के बताए हुए, ये किसी ने ऐसे ही नहीं शुरू किए। उपासक अध्ययन में श्रावकों के क्या आचार होते हैं और आचारांग में तो मुनियों के क्या आचार होते हैं, ये कथन भगवान की वाणी में आए हुए, किसी ने ये अभी ये इतना करेगा तो चलेगा ऐसा नहीं, ये तो क्रमभंग हुआ। मुनियों के भी देव दर्शन नित्य नियमित होता है उसके, यह तो सम्य दृष्टि बात है। और देवशास्त्र गुरु के तो पूजन ने उनका आदर भाव, क्योंकि देव के स्वरूप का निर्णय सबसे प्रथम हुए बिना तो सम्य दर्शन नहीं होता। यानी अंतरंग में उनके प्रति अहोभाव कितने अधिक मात्रा में होगा तभी तो सम्य दर्शन होगा, क्योंकि सर्वज्ञ का स्वरूप जब निश्चित हो जाता है तभी जाके सम्य दर्शन प्रकट होता है। देखो पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी कथन उद्धृत किया जाता है, विपरीत अभिनिवेश रहित। ये विपरीत अभिनिवेश क्या है नितिन भाई? विपरीत, हाँ अभिनिवेश करते हैं अभिप्राय मान्यता, विपरीत यानी उल्टी मान्यता। विपरीत अभिनिवेश रहित, उल्टी मान्यता रहित यानी सीधी सही मान्यता, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि वह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ का ही नाम निश्चय है, तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान स्व्यवहार सम्यक्त्व है। क्या कहते हैं ये निश्चय सम्यक्त्व क्या है? निश्चय सम्यक्त्व जिसको हम समय दर्शन की पर्याय कहेंगे वो निश्चय सम्यक्त्व, और उसके लिए कारणभूत क्या था कि हमने सात तत्वों का स्वरूप सीखा, उस पर विश्वास रखा, वो उसको हम व्यवहार सम्यक्त्व, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है। यानी व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक्त्व जो इसका नाम दिया है वो तो हमने शास्त्र से उसको पढ़ा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है, वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है, ज्ञान गुण की है, चारित्र गुण की है, और उसको हम श्रद्धा गुण की पर्याय कह दिया, ये व्यवहार हुआ। अन्य गुणों की पर्याय को हमने दर्शन गुण की यानी श्रद्धा गुण की पर्याय कहा, ये व्यवहार हुआ। जिसकी है उसको कहना है तो निश्चय हो जाता है। सो उपचार का ही नाम व्यवहार है। वहां सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्त से उसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। यहां विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक तो है, और देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक तो है। इस प्रकार एक ही काल में दो सम्यक तो पाए जाते हैं, अलग नहीं, अलग अलग नहीं होते, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार उपचार नाम कैसे आएगा उस पर? उपचार तो उस पर ही होता है जहां कुछ सही बात है, निमित्त होता है, सहचर होता है। जैसे हमेशा उदाहरण देते ना चाय की बरनी है आपके घर में, चाय से बनी हुई है नहीं तो प्लास्टिक की है, जिस बरनी में हम चाय रखते हैं उसको चाय की बरनी नाम दिया जाता है। तो व्यवहार बरनी और एक निश्चय बरनी, दो बरनी है तो क्या होता है? व्यवहार निश्चय दो चीजें नहीं है, निरूपण कथन दो प्रकार से, चीज तो एक ही है। तो जो है सच में उसको उसी की कहनी वो तो निश्चय हुआ, प्लास्टिक के है उसको प्लास्टिक की कहना ये निश्चय हुआ, उसी बरनी को। संयोग में चाय है तो चाय की बरनी कह देना ये उपचार हुआ, वो व्यवहार हुआ। तो एक व्यवहार बरनी है हमारे पास, एक निश्चय बरनी है ना, दो दो है, दो दो कथन होते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग भी दो नहीं है, कथन दो है। जो निश्चय से है बस वही निश्चय मोक्ष मार्ग, परंतु जो है नहीं है परंतु साथ में पाया जाता है तो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग। या कहना आत्मा का जो परिणाम है, ये सात तत्वों की सही श्रद्धानुरूप जो आत्मा का परिणाम है वो निश्चय समय दर्शन, और साथ में जो देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है वो व्यवहार समय दर्शन, और एक ही काल में दोनों पाए जाते हैं। तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र है। देखो हम देखते हैं, ये तो मिथ्या मान्यता वाले भी अपने अपने धर्म का अपने अपने देवों का उत्सव मनाते हैं, इतने धूमधाम से मनाते हैं, है ना, तो उनके ज्यादा भक्ति होगी कि नहीं? भक्ति ज्यादा भले है परंतु वो तो मिथ्या से चल रही है। यानी देव का स्वरूप ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसका भी विचार कभी नहीं करते, तो ये आभास मात्र है। और उसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं है, यानी विपरीत अभिनिवेश चल रहा है, यानी उल्टी मान्यता चल रही है, इसलिए वहां निश्चय सम्यक्त्व तो है नहीं और व्यवहार सम्यक्त्व का भी आभास मात्र है। यानी जिसको निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है और देव गुरु शास्त्र की बहुत भक्ति कर रहा है, उन्हीं को पूज रहा है, अन्य को किसी को नहीं पूज रहा है, सच्चे देव गुरु शास्त्र, तो उसको व्यवहार समय दर्शन तो है कि नहीं है? निश्चय तो प्रकट होगा बाद में। उसको व्यवहार नाम भी नहीं दिया जाएगा, उसको व्यवहाराभास कहेंगे। तो व्यवहार सम्यक्त्व का भी आभास मात्र है, क्योंकि उसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव का साक्षात कारण नहीं हुआ है। ये जो उसके प्रति उसको कुछ आदर बुद्धि है, पूजा कर रहा है, उसके गुणगान गा रहा है, परंतु उन्होंने दिया हुआ उपदेश सुनकर वैसा स्वयं अनुभव नहीं किया है, तो कहते हैं कि उसको व्यवहार सम्यक्त्व भी नहीं है। ऐसे कहने वाले भी बहुत सारे हैं, पहले व्यवहार समय तो प्रकट होता है बाद में निश्चय समय, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों ही प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में ही प्राप्त होता है, ये अनेक शास्त्रों में ये बात बताई है, यहाँ पर भी लिखते हैं, ये द्रव्य संग्रह में भी आई थी ना बात, दुविहम पे मोक्ष मागम ध्यान झाने पाउन दि मुनि नियमा, यानी ध्यान अवस्था में मुनियों को इन्हें समय दर्शन मुनियों की बात की थी, व्यवहार और निश्चय रत्नत्र एक साथ प्रकट होते हैं। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, ये कारण और कार्य होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उसके बिना उसमें उपचार भी संभव नहीं होता। ऊपर जिस दृष्टि से पंडित आशाधर जी ने अविरत समय दृष्टि के सम्यक्त्व को निश्चय सम्यक्त्व कहा है, उसी दृष्टि से पंडित टोडरमल जी ने निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहा, यानी पंडित आशाधर जी ने भी यही बात बताई। वो तो कब हुए थे, 800 वर्ष पहले, और पंडित टोडरमल जी अभी भी 300 साल पहले, मान लो ना 300 साल पहले। ऐसा निश्चय सम्यक् दृष्टि ही अविरत सम्यक् दृष्टि होता है, क्योंकि उसके संयम का लेश भी नहीं, उसका अविरत इसलिए कहा है उसके संयम नहीं है, परंतु उसके निश्चय सम्यक् दर्शन तो प्रकट हुआ है। उसका कारण यह है, उसके 16 कषायों में से अप्रत्याख्यानावरण आदि 12 कषायों का उदय वर्तमान है, यानी उसका 3 कषाय चोकड़ी का भी उदय चल रहा है, अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व नहीं रहेगा। जिसके उदय में जीव थोड़ा सा भी व्रत संयम धारण करने में असमर्थ होता है, उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। देखो प्रत्याख्यान यानी त्याग, अप्रत्याख्यान यानी थोड़ा त्याग, और उसपे भी आवरण, यानी किंचित मात्र भी त्याग नहीं होने देते, वो अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण किसको कहेंगे? प्रत्याख्यान यानी त्याग, सकल त्याग, वो जो नहीं होने देते वो प्रत्याख्यानावरण, यानी पांचवे गुणस्थान वाले को प्रत्याख्यानावरण तो नहीं है, प्रत्याख्यानावरण ये मुनि योग के सकल संयम नहीं होने देते, थोड़ा सा होने देते। तो कहते अप्रत्याख्यान, एक ये बात समझने योग्य है, चार कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संयम, मिथ्या दृष्टि को चार सभी है। तो मिथ्या दृष्टि के संज्वलन के उदय में थोड़ा संयम होता होगा, उसे तो चारों है ना, परंतु चारों है अनंतानुबंधी का जहां सद्भाव है वो चारों अनंतानुबंधी जैसा कार्य कर रहे, उनके उस उत्कृष्ट अनुभव का उदय चल रहा है मिथ्यात अवस्था में। जब अनंतानुबंधी नहीं रहा वो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन है, सभी वो प्रत्याख्यानावरण जैसा कार्य कर रहे। जब पांचवा गुणस्थान है प्रत्याख्यानावरण संज्वलन दोनों ही है, परंतु फिर भी सकल संयम नहीं है, अब प्रत्याख्यानावरण जैसे संज्वलन भी काम कर रहा है। जब मुनि हुए छठा सातवा गुणस्थान है तो संज्वलन का उदय चल रहा है और सकल संयम भी है, परंतु ये यथाख्यात संयम यानी पूर्ण वितरागता नहीं होने देते हैं, ऐसा इसका कार्य वहां चल रहा है। यथाख्यात ग्यारहवा बारहवा तेरहवा चौदहवा वहां कषाय बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से इसका बस मुनियों के ही संज्वलन है, वो उसके सकल संयम के साथ साथ चलते हैं। तो मिथ्या दृष्टि का जो संज्वलन है वो अनंतानुबंधी इतना तीव्र है तो भी वो अनंतानुबंधी जैसा ही, क्योंकि उनके तो अनंतानुबंधी भी है, मिथ्या दृष्टि के अति मंद कषाय चल रहे, मुनिव्रत भी लेते और देवे तक के जाने के परिणाम है, यानी इतने मंद परिणाम है, फिर भी वो अनंतानुबंधी की जाति उसकी है, हम उसको वो जल रेखा नहीं कह सकते, मिथ्या तो पड़ा है, वो मंदता के तीव्रता के ऊपर नहीं, वो तो सम्यक्त्व का घातक है, ये उसका लक्षण है। मंदता तीव्रता से अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, वो किसका घात कर रहे उसकी अपेक्षा से उसके भेद। हाँ देखो आगे हम पढ़ेंगे, तो अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं थोड़ा भी व्रत संयम धारने में समर्थ नहीं है, इसी के उदय से मिला सबको, इसी के उदय से प्रेरित होकर, इसी के यानी किसके, वो प्रत्याख्यानावरण मुख्य है ना, वैसा कार्य चल रहा है, वह इंद्रिय संबंधी सुख को भी भोगता है और स्थावर तथा त्रस जीवों का घात भी करता है, ऐसा वह सम्यक्त्व दशा में ही करता है, तभी तो उसे अविरत सम्यक् दृष्टि कहते हैं। गोमरसार जीव कांड में भी सिद्धांत, वो एक संघ एक आंकड़ा लिया, वो हम फुटनोट में देखेंगे एक नंबर का। यत उदया देश विरति संयमा संयमाख्यायाम अल्पमपि कर्तुम न शक्नोति ते देश प्रत्याख्यानम आवृणन्तः अप्रत्याख्यानावरणः क्रोध मान माया लोभाः, यानी जिनके उदय में देश विरत यानी संयमा संयम थोड़ा भी शक्य नहीं है, वे देश प्रत्याख्यानम आवृणंती, यानी देश प्रत्याख्यान यानी अवृत को भी आवरण डालते हैं, उसको कहेंगे अप्रत्याख्यानावरण। सर्वार सिद्धि में ये उसकी परिभाषा बताइए, सर्वार सिद्धि क्या मालूम है? नहीं नहीं, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अलग, सर्वार सिद्धि नामक जो शास्त्र है तत्वार सूत्र की टीका लिखा पूज्यपाद आचार्य। बहुत सारे अभी उसके आत्मा की अनुभूति होती है, ये वीर सागर महाराज ने पुस्तक निकाली थी 50 पेज 60 पेज, उसमें तो कितने आचार्यों के उद्धरण दिए थे, जिसको मानना ही नहीं हो तो कुछ भी कारण बता। अब ये जो दूसरा पॉइंट लिखे गोमरसार जीवकांड में भी सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिषारण्य ऐसा ही कहा है, कि जो न तो इंद्रियों के विषयों से विरत है और न त्रस और स्थावर जीवन की हिंसा से विरत है, केवल जिन वचनों पर उसकी श्रद्धा है वह अविरत सम्यक दृष्टि है। अब नीचे उसका उद्धरण दिया है, नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसेवापि जो सद्दह दिजिणुत्तम सम्माइठी अविरदोसो। ये गोमटसार जीवकांड की 29 नंबर की गाथा है। यहाँ उसका उदाहरण पंडित आशाधर ने जो दिया है, कोतवाल के द्वारा मारने के लिए पकड़े गए चोर से दिया। यही उदाहरण ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में दिया है। नीचे बृहद द्रव्य संग्रह की टीका 3 नंबर फुटनोट में, भूमि रेखादि सदृश कल आई थी ना ये बात, पृथ्वी भेद कहा था उसको एक्चुअली, भूमि रेखादि सदृश क्रोधादि द्वितीय कषाय उदयेन, क्या कहते हैं ये दूसरे कषाय का उदय, यानी कौन से अनंतानुबंधी का पहला और प्रत्याख्यान का दूसरा, उसको द्वितीय कषाय का कि वो उसका कैसा कहा है, पृथ्वी रेखा आदि के समान, भूमि रेखा क्रोधादि द्वितीय कषाय उदय न मारण निमित्तम तलवर गृहित, तलवर गृहित ने तलवर यानी कोतवाल से उसने पकड़े हुए तस्करवत मारण निमित्तम यानी मारने के लिए, कोतवाल ने उसको मारने के लिए पकड़ा क्योंकि चोर को चोरी करते हुए पकड़ा है, अब वो जाके उसको मारेगा। तलवर गृहित तस्करवत यानी कोतवाल समान, कोतवाल ने पकड़ा है, तलवर गृहित ने कोतवाल ने पकड़े हुए, तस्कर यानी चोर, तस्करवत चोर के समान, आत्मनिंदा सहित सन यानी आत्मनिंदा करता हुआ, इंद्रिय सुखम अनुभवती इति अविरत सम्यक दृष्टे है लक्षणम, यानी जिसे उसको गिल्टी फीलिंग है ना यारे अपने भूल की, ऐसे इंद्रियों को भोगते हुए भी उसमें उसको ऐसा रुचि नहीं, अरे मैं कहाँ अटका हूँ कहाँ सब, ऐसा उसका फीलिंग सम्यक दृष्टि के लिए उन्होंने लिखा है। किंतु दोनों में अंतर है, ब्रह्मदेव जी कहते हैं जैसे मारने के लिए कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया चोर अपनी निंदा वगैरह करता है, वैसे ही अविरत सम्य दृष्टि इंद्रिय सुख भोग कर अपनी निंदा करता है, निंदादि करता है। पंडित आशाधर जी भी अपनी टीका में कहते हैं अविरत सम्य दृष्टि भी अपनी निंदा करता है कि मुझे धिक्कार है मैं हाथ में दीपक लिए हुए होने, यानी हाथ में दीपक लिए हुए होने पर भी, यानी मेरे हाथ में दीपक होने पर भी अंधकूप में गिरने वाले के समान, तो मुझे तो पता है फिर भी मैं कहाँ गिर रहा हूं, तथा गुरु के समक्ष अपनी गरहा भी करता है। कल आपने पूछा ना गरहा क्या है, निंदा तो अपने आप में मन में सोचना और गरहा ने गुरु के सामने अपना दोष प्रकट करके अपनी निंदा करना, उसको गरहा कहते हैं कि भगवान मुझ कुमार्ग मार्गामी का दुर्गति के दुखों से कैसे बचा होगा। इस पर से यह प्रश्न होता है कि ऐसा होते हुए भी वह कैसे इंद्रिय सुख का सेवन करता है और कैसे उसके लिए प्राणियों का घात करता है, तो उसका उत्तर है वह चारित्र मुनि के उदय के अधीन होकर ऐसा करता है। जैसे कोतवाल के द्वारा मारने के लिए पकड़ा गया चोर कोतवाल के अधीन होकर जो जो कोतवाल कराता है, गधे पर चढ़ाना आदि, ये मालूम है कि नहीं? नहीं, पहले के जमाने में क्या मुंह में काला फांसते थे, घोड़े गधे पर बिठाते थे ये उल्टा गांव की तरफ मुंह करके, उसको कहते धिंड, मराठी में कहते पची धिंड काट ले, गुजराती में क्या शब्द है धिंड निकालते, ऐसा कहते हाँ गाँव में खराब है तो वो थोड़ा तो अच्छे शब्दों में होता है ये लिखा ना गधे पर चढ़ाना आदि मराठी में उसके लिए शब्द है दिंड काटने वह उस चोर को करना पड़ता है यानी वो तो अभी कोतवाल जैसे करेगा वैसे होता है उसको तो उसको कुछ विरोध नहीं कर सकता इसी तरह अविरत समय दृष्टि जीव भी चारित्र मोह के उदय से जो जो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा आदि कराई जाती है उसे अयोग्य जानते हुए भी करता है कोई कराता तो है ही नहीं जबरदस्ती इसकी कमजोरी है उसको उदाहरण देके बिल्कुल समझाने के लिए बताया नहीं तो ऐसा नहीं समझना कर्म ही सब कुछ कराता है क्योंकि पहले से ही लोगों की ऐसी मान्यता होती है ऐसा कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका सही अर्थ कैसे निकालना मालूम नहीं है और हाँ तो विपरीत अर्थ निकाल लेते हैं अयोग्य जानते हुए भी करता है क्योंकि अपने समय पर फलोन्मुख हुए कर्म के उदय को टालना बहुत ही कठिन है यानी कर्मों का ऐसा तीव्र उदय आता है तो उसके वो भाव आते हैं आने वाले को तो वो स्वामित्व तो नहीं उसका करने जैसा है भी नहीं मानता फिर भी आते हुए को जानता है उससे भी उसका भेदियान तो चल रहा है परंतु उसके वो पर्याय में है परिणाम तो उसको बताया भी जाता है इस तरह पंडित आशाधर जी ने उस दृष्टांत का प्रयोग दूसरे प्रकार से किया दोनों ने एक ही दृष्टांत दिया है मगर दोनों का उसमें से जो सिमिली बताई है वो अलग अलग पद्धति से बताई है उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अविरत समय दृष्टि के किसी प्रकार का कोई त्याग नहीं होता किंतु त्याग के मार्ग पर चलने की आंतरिक भूमिका मात्र तैयार हो जाती है यानी उसके त्याग की भूमि पर आगे जाकर मुझे करना है ये तो उसके निश्चित हुआ है उसके अंदर में जिस इंद्रिय सुख को ही सार मानकर जीव दुनिया भर के पाप कार्य करता है उसे वो अंतकरण से हेय मानने लगता है यानी वो भोगते हुए भी उसके प्रति हेयता का भाव निरंतर उस काल में भी उसके वर्तता है और जिस आत्मिक सुख को वो भूला था उसे उपादेय मानता है उसकी आंतरिक श्रद्धा ही उसे अविरत समय दृष्टि से देश विरत और सर्व विरत बनाती है किंतु लेश मात्र देश संयम के नहीं होने पर भी सम्यक्त मात्र से ही उसके सांसारिक कष्टों में कमी हो जाती है ये बात यहाँ बता रहे हैं शुरुआत की थी कि उसके सांसारिक कष्ट नहीं होते हैं नहीं उसके तीव्रता उसके वैसी नहीं लगती है जैसे मिथ्या दृष्टि को भाषित होती है सम्यक्त ग्रहण करने से पहले आगामी भोग की आयु का बंधन न करने वाले असंयमी भी समय दृष्टि के देखो क्या कहना था यानी जिसने सम्यक्त के पहले आयु का बंधन नहीं किया हो ऐसे समय दृष्टि की बात चलती तो वो असंयमी होने पर भी ये थोड़ी वाक्य रचना समझने में कठिन होगी देखो फिर पढ़ती हूँ सम्यक्त ग्रहण करने से पहले आगामी भोग के आयु का बंधन करने वाले यानी ये अबद्धायु इसको एक शब्द में कहने तो अबद्धायु असंयमी भी यानी जो अबद्धायु समय दृष्टि है वो असंयमी होने पर भी सुदेव और उत्तम मनुष्य पर्याय को छोड़कर शेष समस्त जन्म पापा हो जाता है उस समय दृष्टि को सुदेव यानी वो पौनत्रिक को छोड़कर बाकी सबको सुदेव का यानी समय दृष्टि जीव चारों ही गति के देव और नार की समय दृष्टि मनुष्य की आयु बांधेंगे मनुष्य तिर्यंच समय दृष्टि देवायु बांधेंगे ये बात बताए कि सुदेव और उत्तम मनुष्य पर्याय को छोड़कर शेष समस्त जन्मों का अभाव हो जाता है जब तक समय तो रहेगा तब तक की बात है मिथ्यात्व में चले जाए तो चारों गति में घूम सकते हैं उत्तम मनुष्य यानी उत्तम कुल है, उच्च गोत्र है, यानी समय दृष्टि है उसके, वैसा पुण्य भी है, ऐसे को हीन जाति के मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होगी। शेष जन्मों का अभाव होता है, छोड़कर इनका सद्भाव रहता है, इन्हीं में जाएगा अन्य में नहीं जाएगा, इनको छोड़कर शेष का अभाव होता है, यानी अन्य पर्याय में उत्पन्न नहीं होगा। सम्मिलित होने के बाद अविरत भी बराबर कहा नहीं मेल करता बराबर है ना, क्योंकि अबद्धा इश्क समय दृष्टि मर कर या तो उत्तम देव होता है या उत्तम मनुष्य होता है, वही तो बात बताना चाहते हैं, ऊपर वही बात बताइए। मनुष्य होगा तो देव करेगा, वही तो बताया तीरियन चार मनुष्य देव का करेंगे और देव और नारकी मनुष्य का करेंगे, इसलिए उत्तम मनुष्य भी लिखा और सुदेव भी लिखा, यहाँ लिखा ना, क्योंकि अबद्धायुष का समय दृष्टि मर कर, अबद्धायुष का समय दृष्टि मर कर यानी अबद्धायु वाला तो मरेगा नहीं, तो लिखने में उनकी यानी बाद में कौन सी आयु बांधेगा, सम्यक तो होने के बाद या तो उत्तम देह होता है उत्तम मनुष्य होता है, परंतु वो आगे बांधेगा जो अबद्धायु में, तो अबद्धायु कौन होता है जो उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, ये वाक्य रचना थोड़ी बराबर नहीं ली है, अबद्धायु समय दृष्टि मर कर, अबद्धायु कोई भी मरता नहीं है, या तो मोक्ष जाते हैं या पहले अबद्धायु थे बाद में समय दृष्टि हुए फिर उन्होंने आयु का बंध किया, तो कौन सी पर्याय का किया, देव का है मनुष्य का, तीर्यंच मनुष्य समय दृष्टि देव का ही बंध करेंगे और देव नार की समय दृष्टि मनुष्य मनुष्य आयु को ही बांधेंगे, ये नक्की है, नहीं समय दृष्टि मनुष्य नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं वो कौन है,
मनुष्य हुआ
पहले बद्धायु वाली बात, यहाँ अबद्धायु की बात चल
रही
है, यानी भोग भूमि के कौन बांधेगा, मिथ्या दृष्टि बांधेगा, समय दृष्टि भोग भूमि के आयु बाद में समय दर्शन, देखो किसी ने मनुष्य आयु तिरियंचायु बांधी बाद में उसको समय दर्शन हुआ, तो मान लेते ऑप्शन एक हुआ वेदक हुआ, यदि वो क्षायिक नहीं होता तो सम्यक्त के साथ भूभूमि में भी नहीं जाएगा, अभी ये पंचम काल का कोई यहाँ से वहाँ भूभूमि में जन्म नहीं लेगा, हाँ मिथ्या दृष्टि जा सकता है, सम्यक दृष्टि जिसने पहले ना मनुष्यायु बांधी है बाद में जिसको सम्यक्त हुआ है और इस काल में क्षायिक नहीं हो सकता तो उसको तो हाँ भूभूमि में जाएगा या कर्मभूमि में जाएगा, कितनी आयु बांधी उस पर निर्भर है, भूभूमि में भी जा सकता है, रहा तो नहीं जा सकता, वो छोड़ के ही जाना पड़ेगा, आयु बांधी हो तो आयु चेंज नहीं होगी, मनुष्य आयु बांधी है तो वो तो चेंज नहीं होगी, हो सकता है अभी समय तो प्राप्त किया फिर मिथ्या तो गया और फिर मनुष्य हुआ, जितनी आयु बंदी है वहां का मनुष्य होगा, हो सकता है भोग भूमि का हुआ, हो सकता है विदेह क्षेत्र का हुआ, फिर इधर भी जन्म ले सकता है, अभी जहाँ की जैसी बंदी हो वैसी वहाँ चला जाएगा।
अच्छा वो विदेह क्षेत्र में जा सकता है,
हाँ वो विदेह क्षेत्र में जा सकता है, फिर भी यहाँ से जाने वाला मिथ्या तो में जाकर जाएगा, विदेह क्षेत्र में जा सकता है, किसी को भेजना है सिमंदर के पास बहुत ऑप्शन है, वो वहाँ भी एक आर्यखंड और पांच मिलेंज खंड है, और सिमंदर के पास क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि निमित्त से कार्य होता है ऐसा मान्यता पड़ी है कहीं, और जुगमंदर बाहु सुबाहु संजय तक स्वयं प्रभु पुरुषभानंद कोई कोई नहीं चलेगा, चलो अभी हम रुकते हैं, अपना तो समय हो गया यहाँ पर। हाँ ये पहली बार पूरा कर लेते हैं। किंतु जो आगामी भोग की आयु का बंध कर लेने के बाद श्रमिक को ग्रहण करता है, उसने यदि नरकायु का बंध किया है, वह मरकर प्रथम नरक में जघन्य स्थिति ही भोगता है। शायिक होना आवश्यक है और जघन्य स्थिति ही कहला, वो तो 10,000 वर्ष की नहीं होती है, 84,000 तो होगी ही होगी उसकी। अतः केवल सम्यक्त के प्रभाव से उसका बहुत सा दुख घट जाता है। अतः संयम धारण करने का समय आने से पहले संसार से भयभीत भोगे जीव को सदा सम्यक दर्शन की आराधना में ही प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार उक्त श्लोक का उपसंहार विधि परक ही कर लेना चाहिए। रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमु सदा देव।